संबंध। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहां शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर माने निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा। दूसरा, वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर उन्हें भगवत स्वरूप समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहां तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वो नाशवान हो जाता है। यहां अल्पमेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं और विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर यह फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक और फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, तथा मेरी आराधना में नियम हो कम फल हो अधिक और हो जाए कल्याण, ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में ही लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है तुच्छ है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहां अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाएं यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दें और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते 15 का 6, परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अर्थात देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, 9:21। मेरा भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति कहा और उदार भी कहा। 7:16-18। यहाँ मद भक्ता यान्ति माम अपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर तो मेरा ही अंश है ना। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप ही है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और फिर उसमें कामना रखना, ये दोनों पतन के कारण है। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव, देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोक में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो और अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो और अपने में निष्काम भाव भी न हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान है, क्योंकि देवता खुद सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना ही क्यों करते, भगवान की उपासना ही करते, अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो केवल भाव की प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि और पदार्थों की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्प मेधा माने तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी संसार की विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वविद्, सब कुछ जानने वाला है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक।